16 नंबर के रजिस्टर में 63 पेज पर 10/3/88 का कांटे ग्लास रिकॉर्ड चला है धीरज धर मनुआ धीरज धर। जिनको दुख है उनके लिए बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, और तुम बच्चों के लिए तो दुख की बात ही नहीं है। तुम बच्चों का ये जन्म अमूल्य है, तुम जानते हो अभी हम बाप से वर्षा ले रहे। जिस बाप को सृष्टि भर में कोई भी मनुष्य नहीं जानते, अगर जानते तो औरों को भी पहचान दे सकते। अब यह है भक्ति मार्ग, तमो प्रधान झाड़। हर एक झाड़ का अलग अलग बीज होता है, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ एक ही है, उनका एक ही बीज है, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। और कोई झाड़ को कल्प वृक्ष नहीं कहा जाता। इसके नीचे कपिल देव और कामधेनु अब बैठे हुए हैं। कपिल देव और कामधेनु कब बैठे हुए हैं? माना अब माना संगम युग में। कपिल देव को आदिदेव ब्रह्मा भी कहते हैं। नाम तो बहुत रख देते हैं। अब कामधेनु कोई गौ तो नहीं है, जानवर गौ की तो बात नहीं है। मनुष्यों ने फिर गौ रख दी है और कहते उनको कोई चुरा ले गए। ये सब हैं कथाएं जो भक्ति मार्ग में सुननी होती हैं। जो भी शास्त्र हैं सब भक्ति मार्ग के हैं, जो सुनते सुनते पूरा दुर्गति को पाते। कहते हैं शास्त्र तो अनादि हैं, ये भी झूठ बोलते रहते हैं। बाकी ड्रामा में इनकी भी नूद है। ये शास्त्र कब बनते हैं ये कोई भी नहीं जानते। इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप जो बाप है वो सदैव परम धाम में रहता है। किसका बाप? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप। मनुष्य सृष्टि साकार है या निराकार आत्माओं का झाड़ है? तो साकार झाड़ का बीज भी कैसा होगा? तो वो सदा परम धाम में रहते हैं क्या? है सदा? इस मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है? मनुष्य सृष्टि का बीज मनुष्य होगा या परमात्मा होगा, सुप्रीम सोल होगा? मनुष्य सृष्टि का बीज तो मनुष्य ही होना चाहिए, तो क्या वो सदैव परम धाम में रहते हैं? सदैव तो नहीं। मनुष्य सृष्टि का बीज जहाँ मनुष्य रहते होंगे वहाँ मनुष्य सृष्टि का बीज रहता होगा। और मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कम पार्ट बजाते होंगे, वो बाप है बीज है तो ऑलराउंड पार्ट बजाता होगा, तो परम धाम का वासी कैसे हुआ? सदैव परम नाम में कैसे रहते हैं? है? परम माना परे ते परे धाम, रहने की स्टेज स्थान, क्योंकि जो हीरो पार्टधारी होता है वो ऊंचा पार्ट बजाने वाला होगा या नीचा पार्ट बजाने वाला होगा? ऊंची ही पार्ट बजाएगा। तो परम धाम वासी का मतलब ये नहीं कि कोई ऊपर रहता है मनुष्य सृष्टि का बीज। मनुष्य सृष्टि का बीज तो इसी सृष्टि पर रहता है। जैसे मुरली में बोला, इस सृष्टि पर सदा कायम तो कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शोभा भाई है। तो यहाँ शिव बाबा किसके लिए इंट्रोड्यूस किए गए? जरूर जिस साकार तन में परमात्मा संसार में प्रत्यक्ष होता है, वो साकार तनधारी सोल इस मनुष्य सृष्टि पर सदा कायम है। बाकी को कुछ न कुछ परम धाम में रहना पड़ता है मनुष्य सृष्टि से दूर। मनुष्य सृष्टि पर हर आत्मा ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाती। तो बताया, जो बीज रूप बाप है वो सदैव परम धाम में रहता है। परम धाम माना ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहने वाला। परम धाम में झाड़ों के बीज तो नहीं रहते हैं। किन झाड़ों के? जो और स्थूल झाड़ हैं। मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज ही रहेगा। और वो है सुप्रीम परमात्मा। जिसको बीज रूप अथवा क्रिएटर कहा जाता है, झाड़ को क्रिएट करने वाला, और उनके बच्चों को सालिग्राम कहा जाता है। हम भी वहीं पर रहते हैं। मनुष्य तो ये बातें कुछ जानते नहीं। गीता का भगवान शिव है, शिव नाम जरूर लेना है, क्योंकि रोला सारा गीता में है। गीता किसने गाई ये किसी को पता नहीं। कृष्ण को तो बीज रूप नहीं कहेंगे, क्योंकि कृष्ण तो सत्य रूपी झाड़ का पहला पत्ता है, बीज नहीं है। उनसे भी ऊंच तो कोई और है। किन से? कृष्ण से ऊंच। ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है, और रहते भी ऊंचे हैं। सेकंड तबके में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। फर्स्ट तबके में परमपिता परमात्मा, सेकंड तबके में ब्रह्मा विष्णु शंकर, और थर्ड तबके में है ये मनुष्य सृष्टि। कोई को भी ये पता नहीं है कि मनुष्य सृष्टि का एक ही बीज है जिसे झाड़ निकलता है। तो कितनी आत्माएं हैं जो पार्ट बजाए रही हैं? हर एक आत्मा को फिर अपना अपना पार्ट बजाना है। ऐसे थोड़े ये भगवान मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाते हैं। ये सारी सृष्टि की जो भी मनुष्य आत्मा है उन सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कितनी बेहद की सृष्टि है। इन सबको फिर अपना अपना पार्ट बजाने के लिए आना पड़ता है ड्रामा अनुसार। ये बातें और कोई मनुष्य की बुद्धि में नहीं है। बाप को ही ज्ञान सागर नॉलेज फुल कहा जाता है, उनको फुल नॉलेज है। नॉलेज कौन सी होगी? जरूर नई नॉलेज होगी जो यहाँ किसी को नहीं है। नॉलेज फुल बाप को पहचानने के लिए कौन सा मुद्दा बताया कि जो उसमें नॉलेज होगी, जो उसमें ज्ञान होगा, वो ज्ञान इतना नया होगा कि जो और किसी में नहीं हो सकता। ब्राह्मणों की दुनिया में भी और किसी में नहीं हो सकता, ये तो जानते हैं। नॉलेज से ही मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। जन्म जन्मांतर मनुष्य क्या क्या धंधे करते होंगे और हर जन्म में क्या क्या सीखते हैं और पार पार पार्ट बजाते होंगे। बाप का तो एक ही बार का पार्ट है। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली सब में है, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। तो सर्वव्यापी नहीं है, कुत्ते बिल्ले आदि जानवरों में नहीं आता है या जानवर बुद्धियों में नहीं आता है, लेकिन वो तो एक व्यापी है। सोजरा किसको कहा जाता है ये मनुष्य नहीं जानते। ब्रह्मा का दिन सतयुग, उनको सोजरा कहा जाता है। जब ब्रह्मा अंधेरे से, अज्ञान अंधेरे से उजेले में आ जाए, तो बाप बैठ समझाते हैं कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, परम धाम में रहता हूँ और मुझे आना जरूर है। कहाँ? नहीं, परम धाम की ऊंची स्टेज से कहाँ आना है? ऐसे नहीं कि ऊंची स्टेज में ही रहता हूँ। छोड़ विदे आकाश सिंहासन, मतलब ऊंची स्टेज में ही नहीं रहता, नीचे भी आता हूँ। आना जरूर है। सृष्टि को और मनुष्य मात्र को पावन बनाने के लिए ऊंचा सिंहासन छोड़ के कहाँ आता हूँ? नीचे, नीचे की सृष्टि में, मनुष्य में है। वो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होते हैं, वहां तो एक ही धर्म होता है। तो सेंसिबल मनुष्य झट समझेंगे बरोबर भारत सोने की चिड़िया थी, बहुत माला माल था, उसको स्वर्ग कहा जाता था, देवी देवताएं राज्य करते थे। परंतु यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। गपोड़े बहुत लगाते रहते हैं, समझते हैं आगे के लिए, आगे के जो ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी थे ऋषियों मुनियों को त्रिकालदर्शी कहेंगे और देवताओं के लिए नहीं कहते हैं। ऋषि मुनि के लिए कहते हैं कि वो त्रिकालदर्शी थे। तो देवताएं ऊंचे या ऋषि मुनि ऊंचे? ऋषि मुनि ऊंचे हो गए। अब ऋषि मुनि भी दो प्रकार के होते हैं, एक है हठ योग ऋषि और दूसरे हैं राजयोग ऋषि। पवित्र तो दोनों बनते हैं, लेकिन पवित्रता की सीमा अपनी अपनी, और दोनों ही संगम पर होते हैं। क्या कहा? हठ योग ऋषि भी और राज ऋषि भी, सहज योगी दोनों संगम पर होते हैं। तो संगम पर ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया को ही संगम युग कहा जाता है। तो ब्राह्मणों में ही दो प्रकार के ब्राह्मण हो गए, एक हठ योग ऋषि और दूसरे राजयोग ऋषि। देवताओं के समय तो ऋषि मुनि हो नहीं सकते, पहले सिर्फ हठ योगी रहते थे, यानी द्वापर कलयुग में, और संगम युग में हठ योग ऋषि भी हैं और राजयोग ऋषि भी। तो राजयोग ऋषियों का ये फाउंडेशन लग रहा है। जैसे शास्त्रों में दो प्रकार के ब्राह्मण दिखाई दिए, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण भी, तो गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी, तो ऐसे ही ऋषि मुनियों की भी दो कैटेगरीज बता दी, एक राजयोगी और दूसरे हठ योगी, अपनी हठ चलाएंगे। परमात्मा जो सहज रास्ता बताते हैं वो नहीं पकड़ेंगे। तो ऋषियों का ये फाउंडेशन लग रहा है, ये राजयोग ऋषि फूल बनने वाले। अच्छा, ये राजयोग ऋषि फूल बनने वाले हैं, तो वो हठ योग ऋषि क्या बनने वाले हैं? वो काटा बनने वाले हैं, पर तो सबको दुख देंगे। दूसरा पेज, ये कांटों का जंगल ही कहा जाता है, क्योंकि पहले तो इस दुनिया में सब हठ योग ऋषि कांटे ही होते हैं, खुद भी नीचे गिरते जाते और दुनिया भी नीचे गिरती जाती। तो दुख का लेन देन करते करते अधम गति होती जाती। तो कांटों का जंगल कहा जाता है, फूलों का बगीचा कहा जाता है। तो जंगल को जरूर आग लगनी चाहिए, बगीचे में तो पानी लगाया जाता है, ज्ञान जल का छींटा लगाया जाता है, और जंगल, जंगल तो कांटों का है, उसमें जरूर आग लगनी चाहिए। बगीचे को कब आग नहीं लगती है? स्थूल आग की बात है क्या? है किसी देश में आग भड़क उठी तो स्थूल आग के लिए ही कहते हैं क्या? हमारे दिल में आग लगी हुई है तो स्थूल की आग की बात है क्या? ये क्रांति की बात है। जलन होती है। जैसे रावण का दिल जलता था तो बगीचे को आग कब नहीं लगती। जहां ज्ञान होगा, रग रग में ज्ञान समाया हुआ होगा, वो दिल के अंदर जल नहीं सकता। जहां अज्ञान होगा, झूठ होगा, वहीं आग लगती। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि बगीचे को आग लगी, नहीं, जंगल को आग लगती। जिसका नाम ही रखा है महाभारी, महाभारत लड़ाई, जिससे स्वर्ग के गेट खुलते। महाभारी, इससे ज्यादा भारी कोई लड़ाई कोई नहीं होती है। 5000 वर्ष में इतनी बड़ी लड़ाई कभी नहीं हुई, इतना खून खराबा करने वाली, वो भी दो रूप से, पहले सूक्ष्म रूप में और फिर बड़े रूप में। सूक्ष्म रूप में ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर, क्योंकि तुम बच्चों के लिए इतने बड़े विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है, ऐसे अव्यक्त बाप दादा ने बोला। तो अपने ही उस छोटे से संसार में हम सारी दुनिया का प्रतिबिंब देखते हैं। तो पहले सूक्ष्म लड़ाई चलती है ब्राह्मणों की दुनिया में, महाभारी लड़ाई, और दूसरा महाभारत, उसका नाम दिया महाभारत, भारत में ही होती है महाभारत लड़ाई, क्योंकि भारत से इसकी जड़ निकलती है, भारत ही निमित्त बनता है उस लड़ाई का। इसलिए वाणी में बोला, विनाश ज्वाला कब प्रज्वलित हुई, कौन निमित्त बने। तो अव्यक्त वाणी में ही जवाब दिया, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। यज्ञ के आदमी विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो जो निमित्त बने थे विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए, उन्हीं को अब संपन्न करने के लिए निमित्त बनना है। कौन निमित्त बने थे, उनका नाम नहीं बताया क्या? बताया, तीन नाम बताए। विनाश ज्वाला को यज्ञ के आदि में प्रज्वलित करने के निमित्त तीन बने, ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। बच्चे नंबर वन, तो जो प्रज्वलित करने के निमित्त बने उन्हीं को अब संपन्न करना है। तो यज्ञ के आदि में जो सत्संग में खेड़ बखेड़ा हुआ था, आग लगी थी, उस आग को लगाने के निमित्त कोई बाहर की दुनिया के लोग नहीं, घर के सदस्य अगर अंदर से संगठित हैं तो बाहर वाला कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन घर के अंदर के व्यक्तियों में अगर संगठन टूट रहा है चार दीवारी की ईंटें निकल रही हैं, खिसक रही हैं, तो वो मकान रूपी संगठन हिल गया। तो ऐसे यदि के आदि में भी हुआ जो निमित्त बने विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के ब्रह्मा बाप प्रजापिता शिव बाप की तो बात ही नहीं है ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे वो साथी बन गए आदि में भी वही वो ब्रह्मा आदि ब्रह्मा और टाइटलधारी ब्रह्मा क्योंकि जिसको टाइटल दिया जाता है वो भी काम तो वही करता है कौन सा जिसका टाइटल उसको मिलता है तो जरूर यज्ञ के आदि में फ्रिक्शन पड़ा था
ब्रह्मा तो बाद में रहा ना
वो तो बाद में हो गई बच्चा तो बाद में होगा पहले बाप होगा फिर बच्चा होगा
आदि में जो बिना प्रज्वलित होगा आदि ब्रह्मा ही होगा बाप और बच्चा
तीन हुए तीन बताए बाप माना प्रजापिता ब्रह्मा माना ब्रह्म माने बड़ी माँ माने माँ और बच्चे उसमें सारे ही आ गए क्योंकि बच्चे ही बाप का माँ का टाइटल धारण करते हैं और कार्य को चलाते हैं तो बताया उसमें कोई विधर्मी बच्चे भी होते हैं कोई स्वधर्मी भी होते हैं तो विधर्मी बच्चों का काम होता है फ्रिक्शन डालना दो मते पैदा करना लेकिन बच्चे तो कैसे भी हों वो तो बच्चे ही बुद्धि है माँ बाप तो समझदार होने चाहिए तो फ्रिक्शन यज्ञ के आदि में जो पड़ता है वही अंत में महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध नाम दिया है ग्रह माना घर दुनिया में जितने भी घर हैं उन घरों में मूल घर कौन सा है किसका है, है? जहां से नई दुनिया की शुरुआत होती है वो मूल घर कौन सा है जो सृष्टि के माता पिता हैं एडम ईव हैं आदम हवा हैं तो इस भारत से ये लड़ाई शुरू होती है भारत चैतन्य भी तो भारत जड़ जमीन को भी कहा जाता है जड़ जमीन का परिवर्तन चैतन्य के आधार पर होता है चैतन्य परिवर्तित होगा तो जड़ भी चेंज हो जाएगा तो ये महाभारत लड़ाई जिसमें खून की नदियां बहती हैं एक स्थूल लड़ाई है उसमें स्थूल खून बहता है और ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में सूक्ष्म लड़ाई उसमें संकल्पों का सूक्ष्म खून बहता है जैसे स्थूल शरीर में 16,000 नसें नाड़ियां हैं जिनमें अच्छा और खराब काला और लाल खून बहता है आत्मा में जो संकल्पों का खून है वो भी दो प्रकार का शुद्ध संकल्प और अशुद्ध संकल्प तो मार काट होगी तो शुद्ध संकल्पों का खून भी बहेगा व्यर्थ जाएगा और अशुद्ध संकल्पों का भी खून बहेगा तो ये आग लगती है फिर बाम साध से एकदम जलाकर मनुष्यों को खाक कर देते हैं ये है लास्ट युद्ध। बम्ब का युद्ध जिसका असर सिर्फ विदेशों में होता है, भारत में नहीं, क्योंकि भारत में तो पहले ही विनाश हुआ पड़ा है। यह कितना बड़ा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसका बीज एक ही है। भल कोई इनकी भेंट बढ़ के झाड़ से करते हैं, जिसको बनियन ट्री कहते, परंतु लाखों करोड़ों झाड़ आ जाएं तो भी इनकी भेंट नहीं हो सकती। किसकी भेंट, किसका कंट्रास्ट नहीं हो सकता, किससे नहीं हो सकता? ये जो मनुष्य सृष्टि का इतना बड़ा झाड़ है, इससे उसका कंट्रास्ट स्थूल झाड़ का नहीं हो सकता। बल वो झाड़ की भेंट करते हैं बड़ की झाड़ से, क्योंकि बहुत बड़ा होता है बड़ का वृक्ष, अनेक टाल टालियां जड़ें ले जाती हैं, तना बन जाती हैं, अनेक तने बन जाते हैं, परंतु ऐसे लाखों करोड़ों झाड़ इकट्ठे हो जाएं, तो भी इनकी भेंट नहीं हो सकती। ये तो एक ही झाड़ है बेहद का, जिसका बीज ऊपर में है। जब बीज परिपक्व स्टेज में होता है तो ऊपर होता है, रजिस्टर में 62 पेज अर्थात दूसरा पेज मध्यादि। तो ये मनुष्य सृष्टि का बेहद का झाड़ है, जिसकी भेंट कोई उन स्थूल झाड़ों से कर नहीं सकते हैं, हालांकि करते हैं, क्योंकि वो तो बहुत छोटे होते हैं। ये तो बेहद का झाड़ बहुत बड़ा है, जिसका बीज ऊपर में है। तो झाड़ के ऊपर में होता है बीज, और वो जब तक उस झाड़ से डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता पककर, तब तक वो दोबारा बोने योग्य नहीं होता। न्यारा एकदम, जब तक न्यारा नहीं हुआ है तब तक नई सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती, नई सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। तो ऊंची स्टेज हुई या नीची हुई, जो न्यारा सो प्यारा, क्योंकि न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना होता है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करना होता, वो तो अपने आप बनते हैं। इस समय ये कांटों का झाड़ बना हुआ है, इस समय, समय कौन सा है, संगम युग का समय, जिसमें झाड़ कांटों का बना हुआ है। कांटा माना दुखदाई, सत्युग में कांटे है होते नहीं, इस समय कांटे हैं, और सत्युग तो है ही सत्य का युग, वो तो फूलों का बगीचा है, वो तो है गार्डन, यहाँ तो कभी कहाँ कहाँ आग लगती ही रहती है, कभी एक जगह खूनी क्रांति होगी तो दूसरी जगह खूनी क्रांति होगी, एक दिल में आग लगेगी तो दूसरे दिल में आग लगेगी, तो ये भी दुख की निशानी है ना। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाई कर कांटों से फूल बनाए रहे। बाकी यह इतना सारा झार नेचुरल कैलमिटीज द्वारा खत्म हो जाएगा। महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध से खत्म नहीं होगा, नेचुरल कैलमिटीज बताई। एटम बम जब फटेंगे तो उनकी गर्मी से ये पृथ्वी डोल जाएगी, भूकंप आएंगे और जितने भी ऊंचे ऊंचे महल माणियां अटारियां अट्टालिकाएं बनी हुई हैं वो सब टूट पड़ेंगे। तो ये धरती कंप सबसे बड़े विनाश का साधन बन जाता है। ये हुई नेचुरल कैलेमिटीज भयंकर, सारा धार खत्म हो जाएगा पुराना, आग के साथ जल भी जाए चाहिए, इतनी आग बरसेगी, गर्मी बढ़ेगी तो समुद्र का जल गर्म होगा ना, इतना गर्म वायुमंडल हो जाएगा तो जल भी चाहिए, जो फिर बाढ़ आए और फैमिन भी चाहिए, अकाल भी पड़ेगा। तो इस स्थूल दुनिया में तो इस स्थूल आग लगती, ब्राह्मणों की दुनिया में दिलों में आग लगती, दिल और दिमाग जलता है, फिर जल भी चाहिए क्योंकि सागर का वायुमंडल जब गर्म होगा तो ज्ञान जल भाप बन करके ऊपर उड़ता है। तो जोर से बरसात होती है तो बाढ़ आती है, इतना बरसात हो जाए कि पत्थर भी गिरे और अति की वृष्टि हो जाए, तो ऐसी अति की वृष्टि जिनके दिल और दिमाग में होती है, तो अति तो हर चीज की खराब होती है, ज्ञान की भी अति वो भी खराब होती है। क्यों? क्योंकि बंदरपने का ज्ञान जो है वो बहुत नाशकारक हो जाता है, तो बाह आती है, उस बाढ़ में खुद ही बोड़म बोड़ हो जाते, नदियों में भी बाढ़ आती तो बोड़म बोड़ कर देती है, फैमन भी चाहिए, अकाल भी पड़ता है तो कुछ खाने को नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, अर्थात ज्ञान जल नहीं मिले। जब संघर्ष चलता है, झगड़े होते हैं, तो कहावत है जिस घर में क्रोध होता है उस घर में भरे हुए घड़े भी सूख जाते हैं। तो जो बुद्ध रूपी घड़े ज्ञान जल से भरे हुए होते हैं वो भी सूख जाते हैं। तो ये फैमन भी चाहिए, उस फैमन में फिर अन्न नहीं मिलता। ब्राह्मणों की दुनिया का अन्न है याद, योग, योग का नाम निशान में। जब बुद्धि में टेंशन चलता है, झगड़े टंटे में बुद्धि फंसी हुई होती है, क्रोध भरा हुआ होता है, तो क्रोधी को बाप की याद आ नहीं सकती। तो ये नेचुरल कैलमिटीज भी नूड है ड्रामा में, कलप पहले भी हुई थी। जब ये झाड़ जर्जरीभूत हो जाता है तब सारे भंभोर को आग लग जाती है, बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि इतना हाहाकार होगा, कितना भारी विनाश होगा, सभी आत्माएं वापस जाएंगी। कहाँ? सभी आत्माएं वापस जाएंगी जिस स्टेज में थी, ओरिजिनल स्टेज में, वानप्रस्थ अवस्था में, निर्वाण धाम में वापस जाएंगी। कब जाएंगी बाबर? मनमना भव होकर वापस जाएंगी या अपनी अपनी वाचा तुंडे तुंडे मत्र भिन्ना करके जाएंगी? सबकी मनसा एक होगी, सबकी वाचा एक हो जाएगी, भले किसी की कुटपिट के और किसी की प्यार से, स्नेह से, समझ करके। तो भंबोर को आग लग जाती है, आत्माएं वापस जाती हैं, ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाकी तो जैसे बंदर सेना है और तुमको बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं। स्वर्ग है ही बड़ा मंदिर, तो विनाश होगा तो ये जितना गिरजाघर गुरुद्वारे वो सब खलास हो जाएंगे और एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा जहाँ यथा राजा रानी तथा सब देवी देवताएं रहते हैं। सारा भारत शिवालय, जो भी बाप द्वारा पवित्र बनते हैं वह स्वर्ग रूपी शिवालय में रहते हैं। किसके द्वारा? हठ योग ऋषियों के द्वारा नहीं, बाप द्वारा जो पवित्र बनते हैं। बाप क्या नाम दिया? बाप का नाम क्या दिया? बाप है तो माँ भी होगी, माँ बाप का पीछे नाम क्या बताया? कपिल देव और कामधेनु। तो जो भी बाप द्वारा पवित्र बनते हैं, द्वारा मीडिया, इनडायरेक्ट गुरुओं द्वारा नहीं, डायरेक्ट बाप द्वारा, वो स्वर्ग रूपी शिवालय में रहते हैं। यहाँ हद के शिवालय बनाते हैं और बाप बेहद का शिवालय बनाते हैं। हद के शिवालय में जड़ मूर्तियां होती हैं और बेहद के शिवालय में चैतन्य मूर्तियां। तो बेहद का शिवालय कौन सा युग कहा जाता है? सत्ययुग। तो उस सत्ययुग में जो शिवालय होगा, बेहद का शिवालय, उसमें शिव होगा। फिर शिवालय कैसे? शिवालय में तो खास तो मुख्य तो शिव ही जिक रखा जाता है, शिवलिंग होता है। बिंदु दिखाएं या ना दिखाएं, शिवलिंग के अंदर हीरा दिखाएं या ना दिखाएं, शुरुआत में पहले दिखाते थे। तो बिंदु नहीं दिखाएंगे लेकिन लिंग, लिंग जरूर होता है। तो लिंग किसकी यादगार है? सत्ययुग में जिस साकार में वो बिंदु प्रवेश करता है, वो उस आत्मिक स्टेज में दिखाया गया। तो बताया कि शिवालय में बाप और बच्चे दिखाए जाते हैं, बीच में बाप और चारों ओर बच्चे बैठे हुए, सब एक की पूजा कर रहे, एक की तरफ नैन लगाए बैठे हैं। तो वो हुआ जड़ शिवालय, और सत्युग में होता है बेहद का चैतन्य शिवालय। कितनी समझने की बात है। शिव बाबा ने तो सारे सृष्टि को वैश्यालय से शिवालय बनाया। काय से क्या बनाया? वैश्यालय से शिवालय। अंतर क्या होता है इनमें? वैश्यालय में क्या होता है और शिवालय में क्या होता? वैश्यालय में एक वैश्या को अनेकों की पूजा करनी पड़ती, घर तो वो भी होता है। वैश्या का घर घर नहीं होता है क्या? घर तो होता है, लेकिन अंतर क्या? एक वैश्या और अनेकों की पूजा करेगी, सब में दृष्टि वृत्ति इंद्रियों का संसर्ग करेगी, संग करेगी, वो हुआ वैश्यालय। और शिवालय, ये सारी दुनिया शिवालय बन जाती है तो शिवालय में क्या होगा? जो सारी दुनिया शिवालय बनती है उसमें क्या होगा? फिर उल्टा, सब की दृष्टि वृत्ति इंद्रियों की लगन किसके साथ? एक बाप के साथ। तो शिव बाबा ने सारी सृष्टि को वैश्यालय से शिवालय बनाया है, ये बात दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं और कोई समझा नहीं सकते। जो जानते होंगे वो समझाएंगे भी इस राज को, और जो जानते ही नहीं होंगे तो खुद भी प्रश्नचित्त होंगे और दूसरों को भी प्रश्नचित्त बनाते रहे। समझा नहीं सकते वो या जानते नहीं, तो धारणा करते हैं। जो धारणा करते हैं वो औरों को भी शिवालय के लायक बनाते हैं। खुद बात बुद्धि में धारण नहीं होती, मुझान चलती रहती है, तो औरों को भी लायक नहीं बना सकते। वो हुए बाबा के मददगार जो लायक बनाते हैं, ऊंच पद भी वही पाएंगे। अगर और ही सेवा लेते रहेंगे तो वो थोड़े ही बाबा की मददगार बने। सेवा लेते हैं फिर देनी पड़ेगी, वही एक बात। एक बार कहने से कोई मान जाए, समझ में आ जाए, और वही बात अनेकों बार कही जाए फिर समझ में आए। वही एक स्टूडेंट होता है, विद्यालय में पढ़ता है और घर में उसको ट्यूशन लेने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, विद्यालय में भी पढ़ते हैं, ट्यूशन भी पढ़ते हैं, माँ बाप भी पढ़ाते हैं, फिर भी पढ़ाई पूरी नहीं। तो जो सेवा लेते रहेंगे वो बाप के मददगार थोड़े हुए, ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अगर और ही सेवा लेते रहेंगे तो थोड़े ही मददगार हुए, फिर उनको सेवा देनी पड़ेगी। कहाँ है? जब रिजल्ट निकलेगा तो उनकी प्रारब्ध है, क्लियर हो जाएगी कि ये जन्म जन्म के दास दासी बनने वाले हैं। इन्होंने सेवा की नहीं है लेकिन सेवा ली है, वहाँ जन्म जन्मांतर बहुत सेवा देनी पड़ेगी। प्रजा में भी बहुत आएंगे, मनुष्यों के लिए तो भगवान बहुत हो गए हैं। कृष्ण भी भगवान तो नारायण भी भगवान, हनुमान भी भगवान, हर एक के पास अलग अलग भीड़ लग जाती है। अगर एक ही शिव का मंदिर होता तो कितनी भीड़ लगती, हर एक के पास अलग अलग भीड़ होती है। वास्तव में भीड़ लगनी भी चाहिए, चाहिए किसके मंदिर में भीड़ लगनी चाहिए? शिव के मंदिर में भीड़ लगनी भी चाहिए। शिव बाबा न हो तो लक्ष्मी नारायण भी कैसे बने? वास्तव में पूजनीय लायक एक शिव बाबा ही है। तो सबको ऐसा ऊंच बनाते हैं। ये सब बातें तुम बच्चे ही समझते हो, तुम्हारे में भी कोई की बुद्धि में रहता है, कोई की बुद्धि से गुम हो जाता है। है बहुत सहज, कितने का जीवन हीरे तुल्य बना सकते हैं? ये अविनाशी कमाई है। जैसे उस पढ़ाई से एक जन्म के लिए आजीविका होती है, कितने जन्म के लिए? सिर्फ एक जन्म के लिए, वो भी आजीविका हो या न हो कोई गारंटी नहीं है। तो यह जो आजीविका है अनेक जन्मों के लिए, बाबा अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भर देते। अपना खजाना भर फिर दूसरों का कल्याण करना, खुद भरपूर हो गए कि पाना था सो पा लिया, तो फिर दूसरों को भी आप समान बनाना चाहिए। गरीब को साहूकार, अंधों को सोझरा बनाना, ये तो समझते हो। राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक जैसे तो सोझरे नहीं बनेंगे, सब एक जैसे साहूकार नहीं बनेंगे। इसमें तो 21 जन्मों के लिए सुख पाना है, नहीं तो दास दासी जाकर के बनेंगे। क्या कहा? जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे वो तो हुआ संपूर्ण पुरुषार्थ। अगर नहीं हुए तो दास दासी जाकर के बनेंगे, कल्प कल्प की बाजी हो जाती है। विजयमाला में पुरोनों का पुरुषार्थ करना है तो अब ही करना है। तो तब होगा जब बहुतों को जीए दान देंगे, खजाना भरेंगे। सब बातें समझाई जाती हैं। झाड़ की पॉइंट भी बुद्धि में चलनी चाहिए, तो साथ में बाबा भी याद रहेगा, क्योंकि बीज याद पड़ेगा तो नया झाड़ स्वर्ग याद पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात ये समझाने की है, बोलो। बेहद का बाप भी है और हद का बाप भी है। बेहद का बाप है ये सिर्फ हम ही कहते हैं, हम जानते हैं आत्माओं का बाप जरूर है। शिव का मंदिर भी है, उनको कहते हैं परम पिता, परम आत्मा, गॉड फादर। कृष्ण को भल लाड कृष्ण कहते हैं, परंतु दिल में ये नहीं आता है कि कृष्ण कोई गॉड है। गॉड नहीं, क्या हुआ? लॉर्ड। लॉर्ड मन लॉर्ड तो किसी बड़े आदमी का ही टाइटल होता है, लैंड लॉर्ड, जमीन का मालिक। तुम समझाएंगे सुप्रीम सोल गॉड फादर है तो कहेंगे ये बात ठीक है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। तुम भगवान को सर्वव्यापी कहते हो तो क्या तुम भगवान हो? तुम भी सर्वव्यापी हो क्या? क्या तुम्हारी आत्मा सर्वव्यापी है? अगर आत्मा कहते हो तो फिर परमात्मा नहीं कहो। आत्मा तो बरोबर सर्वव्यापी। भारत में इस बात पर बड़ी बड़ी खिटखिट है, मनुष्य बड़े दुखी हैं। तुम जानते हो बाबा हमको सुखी बनाने आए, परंतु बाबा की मत पर चलने की हिम्मत नहीं है। खिटखिटी किस बात में है भारत में? खास भारत में इसी बात पर खिटखिट है। परमात्मा सर्वव्यापी है या एक व्यापी है? तो बाबा तो हमको सुखी बनाने के लिए आए, एक व्यापी है तो सुखी, और सर्वव्यापी है तो दुखी। तो बाबा की मत पर चलने की हिम्मत नहीं, इसलिए तीसरा पेज। बाप न बाप का वर्षा और न सुदर्शन चक्र याद पड़ता है। अगर कोई कहते हैं हम इतना टाइम याद करते हैं तो बाबा कहेंगे कितनों को फिर याद कराते हो? जो जितना याद करने वाला होगा वो फिर दूसरों को याद कराने वाला भी होगा, क्योंकि जिसके साथ बुद्धि रहती है, संग का रंग लगता है तो वैसा ही बनता है। बाप विश्व कल्याणकारी, तो बाप की याद करने वाला वो भी विश्व कल्याणकारी जरूर बनता है। बाबा जान सकते हैं कि इतना समय याद इनकी ठहर नहीं सकती, एकदम योग में बैठ बाबा को याद करे, याद स्त्रियम रह नहीं सकती, घड़ी घड़ी टूट पड़ेगी। बाकी हाँ, जितना समय बैठते हैं उतना समय चार्ट में लिखते हैं, तो शरीर की बैठक का लिख देते हैं चार्ट में, बाकी बुद्धि एक ठिकाने लगी रहे उसका हिसाब नहीं निकाल सकते। बुद्धि कितना समय याद में रहती है वो हिसाब कोई कर नहीं सकता, याद करते करते फिर बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाएगी। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, दो चार गिट्टी खाता हूँ याद में फिर भूल जाता हूँ। क्या दो चार गिट्टी तो याद में खाई और फिर उसके बाद भूल गए, ये किसका अनुभव? कोई कोई समझते हम तो सारा समय बाबा की याद में रहता हूँ, 15-18 घंटा याद में रहता हूँ, परंतु याद का वो मतलब नहीं समझते। कोई कहते हुआ बाप तो सदैव याद है ही है, अरे बाप को कौन नहीं याद करेगा, हम तो उनके बच्चे ही हैं। परंतु नहीं, कर्म में जब लग जाते हैं, कर्म इंद्रियों से कर्म करने में जब लग जाते हैं, चाहे कोई भी कर्म इंद्रिय हो, तो सारा समय याद बाप की रह नहीं सकती। यहाँ तो खास बुद्धि का योग लगाना है। समझो किसको मुरली सुनाते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए, हम शिव बाबा से सुना हुआ सुनाते हैं, ये नहीं अहंकार आ जाए कि हमने अपना ज्ञान सुनाया। जो बाबा ने हमको सुनाया वो हम सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि बाहर चली जाएगी। तो बाबा हमको सुनाए रहे हैं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाबा बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। कहाँ बैठते हैं? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सुनाने के लिए कहाँ बैठते हैं? राज बताने के लिए कहाँ बैठते हैं? ऊपर घर में ऊपर बैठते हैं या नीचे? ऊपर बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, नीचे की स्टेज में रहने वाला तो है ऊपर का। पर जब तक बीज धरणी में न गिरे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, जब तक बीज खाक में न मिले तब तक सरसब्ज बगीचा नहीं बनता। तो बीज मिट्टी स्टेज में आना और मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी माने जो अभिमान को ही मिट्टी कहा जाता है। तो कोई सुप्रीम सोल मिट्टी में नहीं मिलता, कौन मिलता है? खाक में अपने को कौन मिलाता? वो साधु सन्यासी तो खाक में रमाई लेते हैं, शरीर के ऊपर भस्म रमाई लेंगे। तो उस भस्म की बात नहीं है जो अज्ञात बाप दादा ने बोला कि अब देखेंगे राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं। राख कहो, खाक कहो, भस्म कहो, बात एक ही। राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं और कोटों में से एक और लाखों में से एक कौन निकलते हैं वो भी देखेंगे। हठयोग ऋषियों का ये काम नहीं है। ये काम किसका है? ये है राजयोग ऋषियों का काम। राजयोग ऋषि विश्व कल्याणकारी होंगे, सबके कल्याण की उन्हें चिंता नहीं। तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाबा बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते। कहते हैं इस समय सारा धार जर्जरीभूत आसुरी हो गया, हमको आकर के फिर देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लगाना। बाबा ने पत्थर से बिल्कुल पाउंड बनाया, तो उनका शुक्रिया मानना चाहिए जो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। बहुत सुख देने वाला बाबा है, महिमा है ही उसे एक की। अगर सर्वव्यापी हो तो फिर महिमा किसकी जाएंगे? मनुष्य तो बस इसमें ही खुश हो जाते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, हम भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा। अनेक मतें, बाप की मत न मिले बच्चे से और बच्चे की मत न मिले बाप से, कहाँ की बात है? ये बातें कहाँ की हैं? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही ये सब